पृष्ठ संख्या 104, अध्याय 5, राग भटियार। प्रस्तुत राग भटियार एक अत्यंत प्राचीन राग है। इसको कई नामों से संबोधित किया जाता है, यथा भटियार, भटिहार, भटियारी अथवा भटियाली। इसके ये विभिन्न नाम इस राग के प्राचीन होने का प्रमाण हैं। प्राचीन राग होने के कारण ही इसके स्वरूप एवं नाम में स्नेह शनेह परिवर्तन होता आया है। इसके भिन्न नाम और भिन्न भिन्न स्वरूप प्रचार में अब भी वर्तमान हैं। जैसे कुछ विद्वान इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग करते हैं, कुछ विद्वान एक ही मध्यम एवं कुछ विद्वान दोनों धैवत तथा कुछ लोग एक धैवत का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कहीं पर परज, ललित, कालिंगड़ा का मिश्रण मानते हैं तो कहीं पर रागमांड का। कुछ लोग इसकी उत्पत्ति भैरव, कुछ विद्वान मारवा तथा कुछ विद्वान सूर्यकांत थाट से मानते हैं। भटियार के नाम से संबंध में ऐसी किंवदंती प्रचलित है कि इस राग का निर्माण राजा भृतिहरि ने किया था, इसलिए इसका नाम भटियार रखा गया। इस कथन से भी इस राग के प्राचीन होने का प्रमाण मिलता है। यद्यपि प्रस्तुत राग में पुराने स्थाई अंतरे उपलब्ध नहीं हैं, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, यथा कुछ पुराने गायकों का अनुदार प्रवृत्ति शिष्यों तथा जिज्ञासुजनों भातखंडे जी आदि की प्रबल इच्छा तथा योग्य होने पर भी राग तथा बंदिश को देने में अनुदारता अप्रचलित राग तथा बंदिशों के लोप होने का कारण हो सकता है। वर्तमान समय में प्रचलित राग भटियार में दोनों मध्यम, कोमल ऋषभ तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयुक्त होता है। वादी मध्यम व संवादी षड्ज सर्वमान्य है। प्रस्तुत राग के आरोह अवरोह में वक्र रीति से सातों स्वरों का प्रयोग अवश्य होता है, अतः इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। आजकल भटियार राग का जो स्वरूप प्रचलित है उसमें शुद्ध मध्यम प्रबल तथा वादी स्वर है, साथ ही तीव्र मध्यम का प्रयोग अत्यंत अल्प है। केवल तार सप्तक पर जाते समय तीव्र म ध तार सा, इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत राग में शुद्ध मध्यम का ही यत्र तत्र प्रभुत्व दृष्टिगोचर होता है। मध्यम के इसी अनन्य महत्व को दृष्टिपथ में रखकर प्रस्तुत राग भटियार को मारवा थाट के अंतर्गत रखना उचित नहीं प्रतीत होता। पृष्ठ संख्या 105। परंतु हमारे उत्तर भारतीय रागों को प्रचलित 10 ठाटों के अंतर्गत रखते समय उस राग के स्वर एवं राग के प्रबल अंगों को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रचार में सभी विद्वान इस नियम को मानते हैं। राग भटियार में मारवा का कुछ लक्षण हमें उपलब्ध होता है, यथा तीव्र म ध तार सा, नी तार सा कोमल रे, तार सा नी तार रे कोमल, तार ग तार रे कोमल तार सा। इसके अतिरिक्त कोमल ऋषभ के साथ शुद्ध धैवत का होना भी मारवा थाट का लक्षण है। भटियार राग में हमें उक्त लक्षण उपलब्ध होता है, अतः इसी कारण विद्वत वर्ग इसे मारवा थाट जन्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश राग में रेध कोमल एवं गंधार शुद्ध होना आवश्यक है। मध्यम एक या दोनों भी प्रयुक्त हो सकते हैं। दोनों मध्यम लगने पर यदि तीव्र मध्यम का प्रभाव अधिक रहा तो गायन समय सायंकाल और यदि शुद्ध मध्यम का प्रभाव अधिक रहा तो गायन समय प्रातःकाल मान लेते हैं। प्रस्तुत राग भटियार में शुद्ध मध्यम का प्रभाव अधिक होने के कारण इसका गायन समय प्रातःकाल है। मारवा में कोमल रे और धैवत शुद्ध होने से इसको अपवाद स्वरूप संधि प्रकाश रागों का जनक थाट मान लिया गया है। राग भटियार में भी मारवा थाट का यह लक्षण तथा कोमल रे तथा धैवत और गंधार शुद्ध विद्यमान हैं। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है कि भटियार राग को थाट नियम के अनुसार मारवा थाट जन्य माना गया। ऐसे कतिपय विद्वान राग भटियार को सूर्यकांत थाट से उत्पन्न भी मानते हैं, जो कि दक्षिण के व्यंकटमखी के 72 थाटों में से एक है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि हमारे उत्तर भारतीय राग नियमानुसार अपने प्रचलित 10 थाटों में ही सुव्यवस्थित हो जाएं, तो हमें दूसरी पद्धति का सहारा लेने की क्या आवश्यकता है। अतः मेरे विचार से भटियार राग को निर्विवाद रूप से मारवा थाट जन्य मानना उचित ही नहीं, प्रत्युत आवश्यक भी है। प्रस्तुत राग एक संधि प्रकाश राग ही नहीं, प्रत्युत परमेल प्रवेशक राग भी है, क्योंकि धैवत का शुद्ध होना प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के उपरांत रेधा शुद्ध वर्ग वाले रागों के प्रारंभ होने के समय की ओर इंगित करता है। संधि प्रकाश रागों के गाने का समय प्रातःकाल और सायंकाल 4 से 7 बजे तक का है। इस 3 घंटे के अंदर सबसे पहले पूर्वी थाट के राग, तत्पश्चात भैरव थाट के राग और अंत में मारवा थाट के रागों को गाना चाहिए, क्योंकि मारवा थाट के सभी राग कोमल रे कोमल ध वाले वर्ग की समाप्ति तथा रे ध शुद्ध वर्ग वाले रागों के आगमन की सूचना देते हैं। इसलिए राग भटियार का गायन समय प्रातःकालीन रेधा शुद्ध वाले वर्ग के रागों के पूर्व का मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में राग भटियार का गायन रात्रि के चतुर्थ प्रहर के अंतिम चरण में मानना चाहिए। इस राग का साधारणतः स्वरूप इस प्रकार है। सा ध नी प ध म प ग प ग कोमल रे अवग्रह सा म प ग तीव्र म ध तार सा तार कोमल रे नी प ध नी प ध म ध प म म प ग कोमल रे सा। स्वरों का वक्र प्रयोग इस राग की विशेषता है। इस वक्र प्रयोग के कारण अनेक स्वर संगतियां अनिवार्य रूप से राग में प्रयुक्त होती हैं, यथा तार सा ध नी प ध म प ग सा म प ध प तीव्र म ध तार सा तार कोमल रे नी। आरोह करते समय जब तार सा ध नी प व ध म प ग स्वर संगति का प्रयोग करते हैं तो मांड राग का आभास होता है, परंतु इसके पश्चात कोमल ऋषभ का प्रयोग करने से जैसे प ग कोमल रे सा मांड राग की छाया दूर हो जाती है। यहाँ यदि केवल ऋषभ को शुद्ध कर दिया जाए तो पूर्ण रूप से मांड राग समक्ष आएगा, परंतु केवल कोमल ऋषभ तार सा ध नी प ध म प राग मांड के इतने अधिक स्वर समूह को भटियार राग में परिणित कर देता है। भटियार राग में राग मारवा और मांड के बहुत से स्वर समूह दृष्टिगोचर होते हैं, यथा तार सा ध नी प ध म प ग। इसके अतिरिक्त शुद्ध मध्यम का बाहुल्य एवं कभी कदाचित प ध तार सा स्वर समूह का प्रयोग राग मांड के चिन्ह हैं। सा ध इस प्रकार मध्य षड्ज से मध्य सप्तक के धैवत का लगाव मारवा राग की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त तीव्र म ध तार सा नी तार कोमल रे तार सा तार कोमल रे नी इत्यादि स्वर समूह भी राग मारवा के ही हैं। इसके अतिरिक्त प ग कोमल रे अवग्रह सा स्वर समूह से मारवा थाट के विभास राग का भी दर्शन होता है। इस हेतु मेरे विचार से भटियार राग को मारवा और मांड तथा मारवा थाट के विभास राग के मिश्रण का ही परिणाम समझना चाहिए। प्रस्तुत राग में साध स्वर गाने के बाद पंचम पर कभी विश्राम नहीं करना चाहिए, जैसे सा ध ध प। इस प्रकार पंचम पर विश्राम करने से देशकार राग समक्ष आएगा, इसलिए सा ध के बाद नी प ध म व ध प म अथवा ध नी प म इस प्रकार के स्वर समुदायों का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्तुत राग में तार कोमल रे नी ऐसा स्वर लगाने के बाद धैवत को न तो दीर्घ ही करना चाहिए न न्यास ही। ऐसा करने से मारवा राग स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगेगा। अतः कोमल रे नी के पश्चात ध नी प म व ध प म इस प्रकार मध्यम स्वर पर न्यास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह राग एक उत्तरांग एवं गंभीर प्रकृति का राग है। उत्तरांग प्रधान राग होने के कारण इसका विस्तार मध्य और तार सप्तक में अधिक होता है। सा म प इस राग में न्यास के स्वर हैं। पृष्ठ संख्या 107, स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। मारवा थाट के अन्य रागों की भांति ही प्रस्तुत राग भटियार में भी राग विस्तार के समय षड्ज का लंघन किया जाता है, जैसे उत्तरांग में नी तार कोमल रे तार ग व तार कोमल रे नी इस तरह प्रयोग करने में षड्ज का लंघन हो जाता है। इस तरह का लंघनात्मक प्रयोग आरोह में कम तथा अवरोह में अधिक दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत राग के आरोह में ऋषभ का अल्पत्व है। पूर्वांग में तो कभी कदाचित ही नी कोमल रे ग ऐसा प्रयोग होता है, परंतु पूर्वांग में सा म व सा ग म प इस प्रकार आरोहात्मक स्वर प्रयोग में ऋषभ त्याज्य ही रहता है। यह अवश्य है कि उत्तरांग में तार षड्ज से ऊपर जाने के लिए नी तार कोमल रे तार ग बराबर प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुत राग के अवरोह में ऋषभ का अलंघन बहुत्व रहता है, क्योंकि अवरोह करते समय षड्ज पर आने के लिए ऋषभ को प ग कोमल रे सा इस प्रकार बराबर लगाते हैं। कभी कभी तो प ग कोमल रे अवग्रह सा इस प्रकार ऋषभ दीर्घ हो जाता है, जिससे राग का स्वरूप खिल उठता है। प्रस्तुत राग के आरोह में गंधार अल्प है, परंतु अवरोह में इसका अलंघन बहुत्व है। आरोह में सा ग म प इस प्रकार गंधार का प्रयोग कम ही होता है, क्योंकि इस राग में सा म और सा ध की स्वर संगति बार बार प्रयुक्त होती है। हाँ, यह अवश्य है कि द्रुत तान के समय सा ग म प इस प्रकार की स्वर संगति का प्रयोग होता है। गंधार का प्रयोग आरोह में वक्र रीति से होता है, यथा सा म प ग म ध प का कर लिए हुए म ध प। कभी कभी गंधार का सीधा प्रयोग आरोह में भी हो जाता है, जैसे ग म प ध नी प ध म। यद्यपि ग म प ध नी प के स्वर लगाव से कुछ कुछ राग नंद का आभास होने लगता है, परंतु नी प के पश्चात आने वाली स्वर संगति ध म है, जिसमें मध्यम शुद्ध और दीर्घ होने से तथा तत्पश्चात म प ध स्वर समुदाय जोड़ने से रागनंद की छाया विलीन हो जाती है। ग म प ध नी प ध तीव्र म स्वर समूह के अंत में मध्यम तीव्र होने से पूर्ण रूप से रागनंद की छाया परिलक्षित होने लगेगी। अतः शुद्ध मध्यम के प्रयोग पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अवरोह में गंधार ध म प ग प ग कोमल रे सा इस तरह बराबर प्रयुक्त होता है। बिना गंधार को लगाए ऋषभ तथा षड्ज की ओर नहीं आते हैं। ध म प ग तीव्र म ध सा तार रे कोमल नी प ध प म प ग सा म प पग कोमल रे सा। इस प्रकार राग विस्तार में गंधार अपन्यास का स्थान ग्रहण कर लेता है। अवरोह में बिना गंधार लगाए ऋषभ की ओर आने से अनिष्टकारी परिणाम दृष्टव्य होगा। यदि मध्यम से ऋषभ पर आए तो भैरव अंग और यदि पंचम से ऋषभ पर आए तो श्री अंग समक्ष आएगा, जिससे प्रस्तुत राग का अनिष्ट ही होगा। इन सभी कारणों के प्रकाश में प्रस्तुत राग के अवरोह में गंधार का अलंघन बहुत्व सिद्ध हो जाता है। पंचम से गंधार पर उतरने में जो प ग की पुनरावृत्ति होती है, इसमें प ध म प ग को मींड के साथ सावकाश रीति से और द्वितीय प ग का शीघ्र ही उच्चारण करना चाहिए। प ग कोमल रे अवग्रह सा। दूसरे प ग का झुकाव ऋषभ की ओर होने से, दूसरे शब्दों में ऋषभ में विशेष आकर्षण होने से यह स्वर संगति विवश होकर ऋषभ की ओर खिंच जाती है, जिससे वह स्वयं हल्का पड़ जाता है। पृष्ठ संख्या 108। शुद्ध मध्यम का प्रस्तुत राग में आंशिक न्यास बहुत्व वादी स्वर संबंधी न्यास बहुत्व है। साधारणतः सभी रागों में यह देखा गया है कि जो स्वर उस राग का वादी स्वर होता है उस पर आरोहात्मक तथा अवरोहात्मक दोनों ही प्रकार का न्यास पूर्ण रूप से होता है। न्यास संबंधी यह नियम वादी स्वरों के लिए करीब करीब सभी रागों में आवश्यक रूप से निभाया जाता है, परंतु भटियार राग के वादी स्वर को इस नियम का अपवाद स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मध्यम पर केवल अवरोहात्मक न्यास होता है, जैसे सा ध प म नी प ध म सा म अवग्रह प ग म ध प म प ग तीव्र म ध तार सा तार कोमल रे नी ध नी प ध प म इत्यादि। इसके विपरीत शुद्ध मध्यम पर आरोहात्मक न्यास यथा सा ग म सा म सा कोमल रे मंद्र नी मंद्र प मंद्र तीव्र म मंद्र ध सा सा म इस राग के लिए हितकर सिद्ध होगा। केवल सा म अवग्रह स्वर संगति में मध्यम अवश्य आरोह में दीर्घ हो जाता है, परंतु इसको न्यास नहीं कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आरोह के स्वरों को लेकर मध्यम पर बार बार जाना और रुकना आरोहात्मक न्यास कहलाएगा, जो कि इस राग में त्याज्य है। भटियार राग के स्थाई अंतरे जो गाए जाते हैं, जैसे उचट गई मोरी नींद व बरनी न जा मुसे तिहारी उपमा इत्यादि, इन सभी बंदिशों में मध्यम पर अवरोहात्मक न्यास ही दृष्टव्य होता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि राग भटियार में शुद्ध मध्यम पर सदैव अवरोहात्मक न्यास ही होता है। वादी स्वर पर यह अपूर्ण न्यास उत्तरांग प्रधान कतिपय रागों में दृष्टिगोचर होता है, यथा राग बसंत में पंचम वादी स्वर है, परंतु उस प्रकार उस पर आरोहात्मक न्यास नहीं होता। इसी प्रकार सोहनी राग में धैवत वादी है, परंतु उस पर आरोहात्मक न्यास कभी नहीं होता है। उत्तरांग प्रधान रागों का स्वरूप अवरोह में स्पष्ट होने के कारण यह अपूर्णत्व साधारणतः आरोह में तथा पूर्वांग प्रधान राग का स्वरूप आरोह में स्पष्ट होने के कारण अपूर्णतः अवरोह में प्रायः दृष्टव्य होता है। राग भटियार में तीव्र मध्यम का अल्पत्व है, आरोह में तीव्र म ध तार सा। इस प्रकार तीव्र मध्यम का प्रयोग तार षड्ज पर जाते समय किया जाता है। यह प्रयोग पंचम शुद्ध मध्यम और गंधार के बाद होता है, जैसे म प ग तीव्र म ध तार सा ध प म तीव्र म ध तार सा तथा नी प ध म म ध प तीव्र म ध तार सा। तीव्र मध्यम का प्रयोग हमेशा तार षड्ज पर जाने के लिए ही किया जाता है। ऐसे तो कभी कभी शुद्ध मध्यम से भी म म ध तार सा इस प्रकार तार षड्ज पर चले जाते हैं। कतिपय विद्वान तीव्र मध्यम का अवरोह में इस प्रकार प्रयोग करते हैं, यथा तीव्र म ग कोमल रे सा, परंतु यह प्रयोग उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि म प ग तीव्र म ग कोमल रे सा इस प्रकार गाने से कुछ कुछ राग भंखार का आभास होने लगता है। कुछ विद्वान प्रस्तुत राग में मंद्रनी कोमल रे ग तीव्र म ध नी तार सा ऐसी तान लगाते हैं, परंतु यह राग भटियार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार सीधा तीव्र मध्यम युक्त आरोह से पूर्ण रूप से मारवा राग होने लगेगा। यह राग जिस प्रकार आलापचारी में वक्र है, उसी प्रकार तान में भी वक्र रखने से राग का स्वरूप स्थिर रहता है। पृष्ठ संख्या 109। पंचम का प्रस्तुत राग में अवरोहात्मक न्यास बहुत्व है, यथा तार कोमल रे नी मींड प ध मींड म ध प, इस प्रकार हमेशा न्यास अवरोह की ओर से होता है। ग म प ध प प ग, इस प्रकार पंचम आरोह में लगता है, परंतु आरोह में इस पर न्यास नहीं किया जाता। इस राग में अपनी एक अनोखी विलक्षणता है कि षड्ज के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर पर पूर्ण न्यास नहीं होता। इस प्रकार के राग प्रचार में नहीं के बराबर हैं। धैवत का प्रयोग प्रस्तुत राग के आरोह अवरोह में सर्वत्र दृष्टव्य होता है, परंतु इस पर न्यास नहीं होता। परंतु यह अवश्य है कि अनुवादी स्वरों में इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है। सा ध ध प व ध म मींड ध अ प तीव्र म ध तार सा तार कोमल रे नी ध नी प नी ध प म प ग म प ध नी प ध म प ग म ध अवग्रह म का कर्ली हुए प म इत्यादि। इस प्रकार यत्र तत्र धैवत का स्वतंत्र और दीर्घ प्रयोग होने से धैवत को इस राग में स्वतंत्र दीर्घ बहुत्व कह सकते हैं। प्रस्तुत राग के आरोह में निषाद का लंघन अल्पत्व है, क्योंकि सदैव तार षड्ज से मिलने के लिए तीव्र म ध तार सा इस प्रकार प्रयोग होने से निषाद छूट जाता है। अवरोह में निषाद का अनाभ्यास अल्पत्व है। तार कोमल रे नी प ध नी ध प इस प्रकार निषाद का प्रयोग करने पर भी इस पर विश्राम नहीं करते। इसके अतिरिक्त अवरोह में तार सा ध स्वर संगति का प्रयोग करने से कभी कभी निषाद का लंघन भी हो जाता है। प्रस्तुत राग में तीव्र म ध नी तार सा नी ध प ऐसा सरल स्वर समूह प्रयोग न करना ही श्रेयस्कर होगा। प्रस्तुत राग का संप्रकृति राग भंखार है, परंतु भंखार में पंचम वादी होता है और धैवत के साथ तीव्र मध्यम की संगति ध तीव्र म होने से भटियार उससे भिन्न हो जाता है। यद्यपि उक्त दोनों रागों में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है, परंतु राग भटियार में शुद्ध मध्यम एवं भंखार में तीव्र मध्यम का महत्व अधिक है। एक ही थाट और प ग तीव्र म ध तार रे कोमल नी स्वर संगति गायन समय एवं समान रूप से स्वरों का प्रयोग होने पर भी अपने अपने प्रमुख नियमों के कारण दोनों राग एक दूसरे से काफी पृथक दृष्टव्य होते हैं। भटियार में सा म इन स्वरों पर विश्रांति होती है। इसके अतिरिक्त राग भटियार का उठाव सा सा ध प म इस प्रकार ध म की संगति राग भटियार में अधिक होने से भटियार राग भंकार राग से काफी भिन्न परिलक्षित होता है। अवरोहात्मक आलापचारी में प ग कोमल रे सा इस स्वर संगति से क्षणिक मारवा थाट के विभास राग का आभास होता है, परंतु तत्काल सा म म प ग अथवा सा ध ध प म इन स्वर समूहों के प्रयोग से विभास राग का आभास दूर होकर पुनः भटियार राग का स्वरूप स्थापित हो जाता है। पृष्ठ संख्या 110। ऐसे दुर्गम रागों को थमतः प्रत्यक्ष गुरुमुख से सीखने के पश्चात ही पुस्तकों का सहारा लेना श्रेयस्कर होगा। प्रस्तुत राग का स्वरूप अत्यंत वक्र होने के कारण सरल आरोह अवरोह निश्चित करना ठीक नहीं है। अतः इस राग का मुख्य चलन दिया जा रहा है। राग का मुख्य चलन सा ध ध प म प ग तीव्र म ध तार सा तार कोमल रे नी प ध म प ग कोमल रे अवग्रह सा म म प ग म ध प म प ग कोमल रे अवग्रह सा।